Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Gauranita, 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 Jai Gauranita. Jai Radha, Jai Radha, Jai Radha. Jai Sita Rama Sano, Jai Sita Rama Sano. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Yaso Madinandana Rajabhano Nagara Gokula Ranjanakana. Yaso Madinandana Rajabhano Nagara Gokula Ranjanakana. Gauti Parana Dhana Madana Manohara. Gauti Parana Dhana Madana Manohara. Kaya Dhamana Vedhana. Kaya Dhamana Vedhana. Kamala Harina Mami Abhilasa. Amala Harina Mami Abhilasa. Vipinna Purandhara Navarina Karava Shanti Badanta Vata. Vipinna Purandhara Navarina Karava Shanti Padanta Vasa. Braja Jana Parana Sura Kula Nasana. Braja Jana Parana Sura Kula Nasana. Nanda Gadana Rakhavala. Nanda Gadana Rakhavala. Govendamana Namanita Tashara. Govendamana Namanita Tashara. Nanda Gopala. Nanda Gopala. Bhamna Kata Jala Gopi Pasanahara. Bhamna Kata Jala Gopi Pasanahara. Rasa Rasika Kripamoya. Rasa Rasika Kripamoya. Sri Radha Vallabha Vrindavana Natvara. Bhakti Vinoda Chaya. Bhakti Vinoda Chaya. Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo.
Jai Om, Mr. Pad Brahmahansa, Pravita Kacharya, Jnavangas, Tabetra, Bhakti Nanda, Swami, Sri Prabhupada Maharaj ki, Sri Sri Gonitai ki, Sri Sri Radha Raj Bhai Lalita Vishaka ki, Sri Sri Sitaram Lakshman Hanuman ki, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guraga. Tama Krishna Prabhu? हिंदी में पढ़ोगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सो टुडेज क्लास इज इन हिंदी सो समबडी कैन ट्रांसलेट For him, and someone can translate for the Mataji, huh? Anand Vrindaneshwari, you can translate? It's in Hindi for somebody who doesn't speak Hindi. So you can sit. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, aaj ke din Thursday ko Hindi class hoti hai na? Chautha skand, 23rd adhyay, shlok number 5. Kanda Mula Palahara Shushka Parnashana Vache A Bhaksha Katiche Bhaksham Vayu Bhaksha Tatha Palam Kandamula Falahara Shushka Parnashana Kwachet Abhaksha Katichet Paksha Vayu Bhaksha Tata Param Kanda Mula Falahara Shushka Parnashana Kwachet Abhaksha Katichet Paksha Vayu Bhaksha Tata Param Kanda Mula Falahara Shushka Parna Sana Kwachet Abhaksha Katichet Paksham Vayu Paksha Tata Param.
Hare Krishna. Kandamula Phalahara
Matajis. शब्दार्थ
कंदा तना मूला जड़े फला फल आहार है खाकर शुष्का सुखी पनडा पतियां असना है खाकर बचे कभी कभी अब भक्षा है कटिचेत कई पक्षान पखवारों तक वायु हवा भक्षा है सांस लेकर ततः परम तत्पश्चात अनुवाद तपोवन में महाराज पृथु कभी वृक्षों के तने तथा जड़ें खाते रहे
जोर से
तो कभी फल तथा सूखी पत्तियां कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया अंत में वे केवल वायु ग्रहण करके उसी से निर्वाह करने लगे तात्पर्य भगवद गीता में योगियों को सलाह दी गई है कि वे जंगल में एकांत में जाकर पवित्र स्थान में अकेले रहें पृथु महाराज के आचरण से हम समझ सकते हैं कि जब वे जंगल गए तो उन्होंने कुछ भक्तों या शिष्यों द्वारा शहर से भेजा गया किसी प्रकार का पक्का भोजन नहीं किया जैसे ही कोई जंगल में रहने का व्रत लेता है उसे केवल जड़ें तने फल सूखी पत्तियां या प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं खानी चाहिए पृथु महाराज की जंगल में रहने के लिए इन नियमों को कठोरता पूर्वक अंगीकार किया अतः वे सूखी पत्ती के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते थे और थोड़े से जल के अतिरिक्त कुछ पीते भी नहीं थे कभी कभी तो वे केवल हवा पर रह जाते थे कभी कभी वे वृक्षों के फल खा लेते थे इस प्रकार वे जंगल में रहकर भोजन के मामले में कठिन तपस्या करने लगे दूसरे शब्दों में जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहता है उसे अधिक भोजन नहीं करना चाहिए श्री रूप गोस्वामी ने भी आगाह किया है कि अधिक खाना तथा अधिक श्रम नियम विरुद्ध है अत्याहार प्रयास्य इनसे कभी भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं की जा सकती वैदिक आदेश के अनुसार जंगल में रहना सतगुणी शहर में रहना रजोगुणी तथा वैश्यालय या मदिरालय में रहना तामसिक है किंतु मंदिर में रहना बैकुंठ में रहना है क्योंकि वह समस्त गुणों से परे होता है कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को भगवान के मंदिर में रहने का सुअवसर प्रदान करता है जो बैकुंठ के ही समान होता है अतः कृष्ण भक्त को न तो जंगल जाने की जरूरत है न ही जंगल में रहने वाले महाराज पृथ्वी या ऋषियों तथा मुनियों का अनुकरण करने की त्रिरूप गोस्वामी शासन के मंत्री पद से अवकाश पाने के बाद वृंदावन गए और महाराज पृथ्वी की भांति एक वृक्ष के नीचे रहने लगे। तब से अनेक लोग रूप गोस्वामी के चरित्र का अनुकरण करके वृंदावन गए हैं, किंतु आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के बजाय उनमें से अनेक वृंदावन जाकर भी अवैध यौनाचार दूत क्रीड़ा तथा नशे के शिकार हुए हैं। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात पाश्चात्य देशों में किया गया है, किंतु पाश्चात्य वासियों के लिए सुकर नहीं कि वे जंगल जाकर वैसे ही कठिन तपस्या करें जैसी पृथ्वी महाराज या रूप गोस्वामी ने की थी। तो भी पाश्चात्यवासी या अन्य लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुसरण मंदिर में रहकर कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर का वास जंगल वास से बढ़कर है। वे कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त कुछ न ग्रहण करने का व्रत ले सकते हैं, विधि विधानों का पालन कर सकते हैं और प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जीवन कभी भी विचलित नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद की जय।
ओम ज्ञानमिनन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाक्य चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदन्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप भक्तों का परिचय करवाना चाहता हूँ। ये हैं सुबह विलास प्रभु, खड़े हो जाओ सुबह। ये प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, बहुत पुराने भक्त हैं और टोरंटो में रहते हैं। तो ये उनकी पत्नी आशालता, वेद आशालता। अच्छा, ये इस वक्त ये दोनों प्रभुपाद के शिष्य हैं, बहुत पुराने भक्त हैं और थोड़े दिनों के लिए आए हैं बॉम्बे मंदिर में। कंदा मूला फला हरा शुष्क पढ़ना शनाक प्रचित अबक्षा कतिचित भक्षण वायु पक्ष तथा परम। आप पृथ्वी महाराज की तपस्या के विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। कहा गया तपोवन में महाराज पृथ्वी कभी वृक्षों के तने खाते थे, कभी जड़ खाते थे। पृथ्वी महाराज शक्तवेश अवतार हैं। भगवान के अवतारों के विषय में कहा गया है, उनके कई विभाग हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, मन्मथरा अवतार, युगावतार और शक्तवेश अवतार। सबको सुनाई दे रहा है पीछे? हाँ, ठीक समझ आ रहा है। तो पृथ्वी महाराज भगवान के अवतार हैं और आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि पहले तो उनके पिता महाराज वीणा का राज्य था, जो कि बिल्कुल नास्तिक विचार के थे और उनके नास्तिक विचार के शासन के कारण प्रजा इतनी दुखी थी कि अंत में ब्राह्मणों को ने श्राप देना पड़ा और उनके पुत्र पृथ्वीराज को राजगद्दी प्राप्त हुई। पृथ्वीराज को जब राजगद्दी प्राप्त हुई, उन्होंने प्रजा को स्पष्ट कहा कि मैं यहां हूं भगवान के प्रतिनिधि के रूप में और तुम सबका कर्तव्य बनता है कि तुम परम भगवान का गुणगान करो। उन्होंने प्रजा को स्पष्ट यह कहा कि तुम सबका कर्तव्य भगवान का गुणगान करो। इस श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अगर कोई राजा या नेता केवल प्रजा से कर लेता है और प्रजा को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता, तो राजा कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आपको स्वर्ग लोक और नरकों का ज्ञान प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवतम में बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस प्रकार का अपराध का क्या परिणाम होगा। और कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी चापलूसी के द्वारा गद्दी प्राप्त कर ले और वो उसका लाभ नहीं उठाए जिम्मेदारी का स्थान का लोगों को अध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए, तो नरक के पास बाद मृत्यु के बाद उसे ऐसे स्थान में जाना पड़ता है जहां कि उसे पीसते हैं। जैसे अब गन्ना का रस निकालने के लिए गन्ने को मशीन के बीच में डालना पड़ता है, एक रूप से फिर रस निकलता है। तो ये जो राजनीतिक नेता इत्यादि जो किसी न किसी रूप से जिम्मेदारी की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं और ना चरित्र रखते हैं ना लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद वैसे स्थान में जाना पड़ेगा जहां कि उन्हें पीसा जाएगा। जैसे हम किसी चीज को मशीन में डाल दें रस निकालने के लिए और फिर इतना दर्द सहना पड़ता है कि वो बेहोश हो जाते हैं। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगर हम शास्त्र के विपरीत कार्य करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो पितु महाराज ने पूरी प्रजा को ये आदेश दिया कि तुम सबका कर्तव्य बनता है कि तुम परम भगवान का गुणगान करो। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भगवान के गुणगान के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप यज्ञ करोगे, जब यज्ञ ही नहीं करोगे तो प्रकृति आपको साथ नहीं देगी। जैसे आजकल आप देखते हो महंगाई का जमाना है, आप देख रहे हो आवश्यकताएं दिन पर दिन घटते जा रही हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर पाप बढ़ते जा रहा है, भूखा मारा है, बाहर आ रही है, अनेक प्रकार की परेशानियां। तो पितु महाराज ने पूरी प्रजा को यह आदेश दिया और उनके राज्य में कुमारास पहुंचे ब्रह्मा जी के पुत्र, और पितु महाराज ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और उनसे ये विनती की कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। और कुमारास ने कहा कि हम जानते हैं कि तुम्हारे पास इन प्रश्नों का उत्तर है जब भी तुम पूछ रहे हो विश्व की भलाई के लिए। जैसे कि परीक्षित महाराज ने पूछा, जब परीक्षित महाराज को सूचना मिली कि 7 दिन के पश्चात उनका अंत आ जाएगा, उन्होंने संतों को बुलाकर क्या पूछा? जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। ये नहीं कि परीक्षित महाराज के पास क्या नहीं था, पर हम सबकी भलाई के लिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा। तो पितु महाराज को दिव्य शिक्षा कुमारास के द्वारा प्राप्त हुई। और पितु महाराज का जो राज्य था सतयुग में था, और पितु महाराज ने हजारों सालों के लिए शासन करने के पश्चात पितु महाराज कहां गए? जंगल में पत्नी के साथ गहरी तपस्या का पालन करने के लिए। पितु महाराज ने पिछले अध्याय में कहा संतों को, हम तुम्हें क्या अर्पण करें? मैं आपकी खुशी के लिए अपनी पत्नी, बच्चे, धन दौलत, राज्य सब कुछ समर्पण करता हूं आपके चरण कमलों में। जैसे कि ठाकुर भक्तिनाथ जी ने कहा, मनस देह गेह योग किशोर मोरा अर्पिनम तुय पदे नंद किशोरा। तो इस अध्याय में आप पढ़ रहे हो कि पितु महाराज ने अपना घर छोड़ा महल छोड़ा और वो जंगल में आए। जंगल में आए किस लिए? और गहराई के साथ तपस्या का पालन करने के लिए। और जब वो अपना शासन राज्य छोड़कर जंगल की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे, जो उनकी प्रजा थी वो इतनी दुखी हो गई, प्रजा से दर्द सहा नहीं गया। क्या दर्द? कि राजा हमें छोड़कर जा रहा है कहां? जंगल में। क्योंकि पृथ्वी महाराज का शासन जो था राम राज्य के समान था। थोड़े दिनों में आप रामनामी उत्सव को मनाओगे और रामचंद्र जी के विषय में आज भी प्रजा उनके शासन का स्मरण करती है। क्यों? क्योंकि भगवान राम जब शासन कर रहे थे, पूरी प्रजा को अपनी औलाद के समान पाल रहे थे। छुप छुप कर भेष बदल कर वो जाते थे ये देखने के लिए प्रजा के किसी सदस्य को कुछ कष्ट नहीं पहुंच रहा। ये थी उनकी चिंता। तो पृथ्वीराज का शासन भी इसी प्रकार का था। पृथ्वीराज प्रजा को पाल रहे थे जैसे एक माता या पिता अपने बच्चों को पालते हैं। तो पृथ्वी महाराज जंगल में आए भगवान का तपस्या करने के लिए। उन्होंने तपस्या की संख्या बढ़ा दी। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार समाज का विभाजन चार वर्ण और चार आश्रमों में होना चाहिए। चार आश्रम क्या हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो पृथ्वी महाराज गृहस्थ आश्रम में रहे, फिर वो आए जंगल में वानप्रस्थ आश्रम का पालन करने के लिए। और बड़ी गहराई से आकर जंगल में उन्होंने तपस्या की। क्या खा रहे थे? तपोवन में आए। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, प्राचीन समय में संत तपस्या करने के लिए वन में जाते थे, जंगलों में जाते थे। आज क्या स्थिति है? आज वन ही समाप्त हो रहे हैं। वृंदावन में पहले वन ही वन थे, है कि नहीं? आज आपको बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखेगी। वृंदावन में इतने पेड़ थे, क्योंकि जो गोस्वामी थे अलग अलग वृक्ष के नीचे रोज सोते थे। आज आप वृंदावन में जाओ आपको पेड़ दिखेंगे ही नहीं। क्या दिखेंगे? केवल एक मकान के ऊपर साथ में जुड़ा हुआ एक और मकान। तो प्राचीन समय में अनेक वन थे जहां की प्रजा जाती थी तपस्या का पालन करने के लिए। तो पृथ्वी महाराज जब जंगल में गए, सूखे पत्ते खाते थे। जैसे कि आप पढ़ते हो, जब वासुदेव देवकी की इच्छा थी कि परम भगवान प्राप्त हों उनके पुत्र के रूप में, तो वो जंगल में गए थे तपस्या का पालन करने के लिए। और जंगल में उन्होंने क्या खाया? केवल हवा और जो पत्ते गिरते थे पेड़ों से। तो पृथ्वी महाराज भी जब गए जंगल में तपस्या के लिए, वो क्या खा रहे थे? वो खा रहे थे वृक्षों की झाल और कभी कभी कोई फल मिल जाता था और सूखे हुए पत्ते, और कभी कभी पानी भी पीते थे, रोज नहीं। और कभी कभी ना पानी ना फल ना पेड़ का कोई वृक्ष का कोई अंग, केवल हवा, हवा में हवा ही अनुभव करते थे। तो ध्रुव महाराज को उनकी सौतेली मां ने रोका था पिता की गोद में बैठने से। और जब ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे, सुनीति ने कहा, मैं तो तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारे पिता मुझे नौकरानी का आदर देते हैं, कौन मेरा सहयोग दे सकता है? मैंने सुना है भगवान दे सकते हैं। कहां प्राप्त होंगे भगवान? सुना है जंगलों में। और ध्रुव महाराज माता की प्रेरणा लेकर ये निर्णय किया उन्होंने कि मैंने जंगल में जाना है भगवान को खोजने के लिए। और जैसे वो निकल रहे थे घर से भगवान को खोजने के लिए, नारद मुनि जी वहां पहुंच गए। नारद मुनि ने कहा, हे बालक कहां जा रहे हो? नारद मुनि तो ठीक अलग गया है, अंतर्यामी है, उन्हें पता था क्या घटना बीती है। खैर उन्होंने पूछा तो ध्रुव ने कहा, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं आपसे बात करने को तैयार हूं, नहीं तो मुझे छोड़ दो, मुझे जंगल में जाना है भगवान को खोजने के लिए। और जब नारद मुनि ने देखा कि ये बालक बड़ा दृढ़ है भगवान को समझने के लिए, भगवान को खोजने के लिए, तो उन्होंने उन्हें उपाय दिया, साधन दिया। क्या था साधन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण, और साथ में भगवान के विग्रह का रूप बनाया था उन्होंने मिट्टी और जल से, और उस पर चिंतन किया। तो ध्रुव महाराज जब गए जंगल में, उन्होंने भी बड़ी गहरी तपस्या की। पहले महीने हंस तीसरे दिन खाते थे, क्या फल जो जानवर खाते हैं, आम नहीं पर जंगल जानवर के फल। दूसरे महीने हर छठे दिन क्या सूखा घास। तीसरे महीने जल पीते थे पर 9 दिन में एक बार। और चौथे महीने सांस भी लेते थे पर 12 दिन में एक बार। तो उन्होंने इतनी गहरी तपस्या की जिसके द्वारा परम भगवान को आकर्षित कर सके। तो पितु महाराज वैसे तो तपस्वी थे शुरू से ही, पर जब उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया तो जंगल में जाकर बहुत गहरी तपस्या कर रहे थे। और आगे के श्लोक में कहा गया है ये गहरी तपस्या कर रहे थे किस लिए? भगवान का चिंतन बढ़ाने के लिए, भगवान के शरणागत होने के लिए। तो पृथु महाराज ने हमें उदाहरण दिया है कि अगर कोई नेता भी बने क्या स्वभाव होना चाहिए। आजकल के जो हमारे नेता हैं वो कभी कुर्सी छोड़ते ही नहीं। कुर्सी छोड़ेंगे जब कोई बीमारी आ जाए या कोई दुर्घटना बीते, पर अपनी इच्छा के अनुसार तो कोई नहीं कहता अब शासन मैंने कर लिया है बहुत देर। पर पृथ्वी महाराज ने शासन किया और खुद ही खुद समाज को त्याग कर, राज्य को त्याग कर कहां गए? जंगल में तपस्या का पालन करने के लिए। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की है। सबसे पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता में कहा गया है जो योगी हैं उन्हें एकांत के स्थान में जाना चाहिए भगवान का चिंतन करने के लिए। तो आप कहोगे अगर पृथु महाराज जंगल में गए, ध्रुव महाराज जंगल में गए, तो हम लोग जंगल में क्यों नहीं जाते? हम लोग यहां झूम में क्यों रह रहे हैं? हमें भी जंगल में जाना चाहिए, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं इस कलयुग में। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो मंदिर हैं भगवान के, इन मंदिरों को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है दिस इज वैकुंठ। प्रभुपाद जी कहते हैं जो मंदिर हैं ये वैकुंठ हैं। तो जो लोग मंदिर में रह रहे हैं वो कहां रह रहे हैं? वैकुंठ धाम में रह रहे हैं। पर हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम ये भाग्य को समझ नहीं पाते, हम ये भाग्य का पूरा लाभ नहीं उठाते। मंदिर में जो रह रहा है, प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मंदिर में जो रह रहा है वो वैकुंठ धाम में रह रहा है। हम जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, ये जो मंदिर है इस्कॉन के, आप कहोगे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बॉम्बे में है, नहीं, ये है वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ है वो स्थान जहां की परम भगवान का गुणगान होता है, जहां की परम भगवान की उपासना होती है। तो इस कलयुग में जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। इस विषय में प्रहलाद महाराज का उपदेश हमें सातवें स्कंद में प्राप्त होता है। प्रहलाद महाराज ने कहा है, भगवान मैं जंगल में जाने के एकांत के स्थान में रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है वहां रहने की जहां के मैं बच जीवों का उद्धार कर सकूं। तो जो भक्त है वो केवल अपने उद्धार का नहीं सोचता। प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे ले जाओ जहां की प्रजा है जिनका मैं उद्धार कर सकूं। तो प्राचीन समय में वन इत्यादि में संत महात्मा जाते थे, पर इस कलयुग में वन में जाने पर बल नहीं दिया गया। मुझे याद है 1975 में एक कीनिया से डिवोटी आया था, अफ्रीकन डिवोटी, प्रभुपाद को मिलने। उस समय प्रभुपाद का रह रहे थे बीबीटी के पास, जो पुराने वो बिल्डिंग अभी टूट गई है। तो ये भक्त कह रहा था प्रभुपाद से, मैं मायापुर जाके अलग कुटिया बनाना चाहता हूं, वो हरिदास ठाकुर के समान मैं दिन रात जाप करना चाहता हूं। प्रभुपाद ने कहा तुम हरिदास ठाकुर की नकल नहीं कर सकते, तुम मंदिरों में ही रहो, अगर एक मंदिर में संतुष्ट नहीं हो तो दूसरे मंदिर में रह लो। पर इस भक्त ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले रहूंगा और दिन रात जाप करूंगा। तो हिचकते हुए, प्रभुपाद के पास कोई उपाय नहीं था, जिद्दी लड़का था, तो प्रभुपाद ने पत्र दे दिया मायापुर के अधिकारियों के लिए कि इसे मायापुर में एकांत के स्थान में कुटिया बनाने दो। तो उस कुटिया में थोड़े दिन उन्होंने भजन किया, उसके बाद छू मंत्र हो गए और किसी ने ना उनको देखा ना उन्होंने किसको देखा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस कलयुग के वातावरण में इन महाभागवतों की नकल करने की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि हम जंगल में जाएंगे, हर तीसरे दिन खाएंगे ध्रुव महाराज के समान और फिर चार महीने बाद खाना बिल्कुल बंद कर देंगे। हमारे लिए क्या आदेश है, खाओ तो कृष्णा प्रसाद खाओ और इसके अलावा और कुछ मत खाओ। तो ये कहा जा रहा है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में रूप गोस्वामी जी के उपदेश में के श्लोक का उपयोग कर रहे हैं, अत्याहारा पयसा प्रज्वल पनियामा ग्रह जन संघ च लोलियम च सद्वीर भक्तिर विनशति। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का उपयोग किया है ये स्थापित करने के लिए कि अगर हम भक्ति के मार्ग में सफल होना चाहते हैं तो हमें आवश्यकता से अधिक भोजन या प्रसाद ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही ग्रहण करो जितना की आवश्यक है। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, भक्ति कैसे खराब होती है, अत्याहारा प्रायश्चित। अत्याहारा का क्या अर्थ है, आवश्यकता से अधिक भोजन खाना, प्रायश्चित आवश्यकता से अधिक परिश्रम करना। कई बार हम कुछ भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए इतना अधिक परिश्रम करते हैं कि हमारी भक्ति की साधना भक्ति के पालन में कठिनाइयां आ जाती हैं। प्रजल्प नियमाग्रह, प्रजल्प भौतिक चर्चा करना, वो चर्चा करना जिसका कृष्णा से कोई संबंध नहीं हो। प्रजल्प नियमाग्रह, नियमों का पालन करना नाम के लिए असली महत्व के साथ नहीं। जन चार लोलियम चार, भौतिकवादियों की संगत रखना आवश्यकता से अधिक। और लाल लोलियम, लोलियम का अर्थ है लालच। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि हमें उतना ही खाना चाहिए जितना कि आवश्यक हो और उससे अधिक नहीं। और वैदिक उपाय क्या है, प्रभुपाद जी कई बार कहते थे कि आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो तो जितनी भूख है 50% आप भरो प्रसाद के साथ, 25% भरो किसके साथ, हवा के साथ, और 25% भरो पानी के साथ। इस प्रकार कभी बीमारी नहीं होगी। पर खैर, अगर आप इसका पालन नहीं कर सकते और आप 100% भरना चाहते हो प्रसाद के साथ, आप कर सकते हो। भक्तों के लिए समाधि के कई साधन हैं और एक है प्रसाद ग्रहण करने का समय। प्रसाद ग्रहण करने के समय सारे भक्त उत्साहित हो जाते हैं। हमारी संस्था जब बनी थी तो हमारे एक नेता थे, उन्हें प्रसाद का बहुत शौक था। अमेरिकन थे, जब वो जुड़े थे पतले थे और थोड़े समय में ही श्वास अच्छा हो गया था। तो वो जब प्रसाद खाने बैठते थे तो जब वो प्रसाद खाने बैठते थे, अपने दरवाजे के आगे एक बोर्ड में लिखते थे, आई एम इन समाधि नाउ प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। वो कहते थे मैं अभी समाधि में हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और जब प्रसाद खा लेते थे तो निकाल देते थे सर। तो अगर हमारा आकर्षण है केवल प्रसाद के प्रति तो फिर वो ठीक है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो मुझे जो भोग लगाए बिना खाता है वो क्या कर रहा है, केवल पाप खा रहा है। तो खाओ तो कृष्णा प्रसाद खाओ। हमें पृथु महाराज या ध्रुव महाराज की गहरी तपस्या का पालन करने की आवश्यकता नहीं। तपस्या का पालन करना है, जैसे भगवान गीता के 5वें 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, तीन चीजों को नहीं त्यागो, यज्ञ दाना और तपस्या। कई धर्म के प्रचारक हैं कभी तपस्या शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके भय रहता है कि अगर हम तपस्या पर बल देंगे तो लोग भाग जाएंगे, कोई आएगा नहीं हमारे पास। भगवान ऋषभ देव जी ने कहा है भागवतम में, तपो देवी हम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये रस्मा ब्रह्म सौख्यम अनंतम। हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम भगवान की खुशी के लिए तपस्या का पालन करो, और इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, इसके बदले में आपको आध्यात्मिक सुख मिलेगा जो कि केवल बढ़ते ही जाएगा, कभी घटेगा नहीं। कई बार हम सोचते हैं भक्ति के मार्ग में जुड़ेंगे तो ये अनेक तपस्या का पालन करना पड़ेगा, तो इसके द्वारा हम कुछ खो रहे हैं। आप जो तपस्या करते हो तो आप असली धन प्राप्त कर रहे हो। तपस्या परम ज्योतिर भागवतम अधोक्षजम, तपस्या के माध्यम से अधोक्षज परम भगवान जिन्हें समझना कठिन है उन्हें आप आकर्षित कर सकते हो। तो तपस्या के बिना आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। इसलिए जो भक्त कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं उन्हें साधना भक्ति की शिक्षा दी जाती है, चाहे मंदिर में हो या घर में हो, उन्हें कहा जाता है 16 माला का जाप करो, उन्हें कहा जाता है 4 नियम का पालन। क्यों? इनके पालन से और भगवान के नाम के उच्चारण से हमारा शुद्ध हृदय जो है शुद्ध बनता है। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में कहते हैं कि रूपा गोस्वामी ने अपनी ऊंची नौकरी को त्याग दिया। रूपा गोस्वामी 500 साल पूर्व विश्व के सबसे धनी राजा का शासन कर रहे थे, उनके राज्य का नवाब हुसैन शाह का जो राज्य था बंगाल का 500 साल पूर्व सबसे धनी राज्य था। तो रूपा गोस्वामी ने उस नौकरी त्यागी और जब त्यागा तो उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि एक पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। और जब उन्होंने ये धन त्याग कर ब्रज में आए तो ब्रज में क्या कर रहे थे? केवल कृष्ण का भजन और रह रहे थे मधुकरी करके। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के सबसे धनी पिता के इकलौते पुत्र थे, पर जब उन्होंने सब कुछ त्याग कर ब्रज में आए तो क्या कर रहे थे? मधुकरी करके वृंदावन में राधाकुंड में रहकर अपना भजन कर रहे थे। तो हमें इस गहरी तपस्या, ये तपस्या तो उन्होंने 500 साल पूर्व की थी, इस गहरी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग वैकुंठ में रहिए, आज आपके पास ये सुविधा है, आज प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से इस्कॉन के केंद्र हैं शुरू कोने कोने में, आपके बॉम्बे में ही 3-4 के केंद्र हैं। तो आज आपके पास पूरी सुविधा है वैकुंठ धाम में रहने की। पर जब आप वैकुंठ धाम में रह रहे हैं एक तरह से तो ये हमारा सौभाग्य है, पर साथ में ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम वैकुंठ का वातावरण रखें। वैकुंठ का वातावरण क्या है? सदा परम भगवान का गुणगान। तो हम सब भक्तों का भाव ऐसे रहना चाहिए कि हम सदा परम भगवान का गुणगान करें। ये नहीं कि हम सोचें हम वैकुंठ धाम में हैं और आश्रम में सोते रहें। ये नहीं कि जब जब का समय है हम आश्रम में विश्राम कर रहे हैं फिर आप वैकुंठ धाम में नहीं हो। वैकुंठ धाम में जब रहोगे, जब आप उस स्थिति का लाभ उठा रहे हो परम भगवान का गुणगान करने के लिए और परम भगवान की सेवा करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह उदाहरण दिया कि जंगल में रहने की आवश्यकता नहीं, अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ करने से पहले भक्ति सिद्धांत जी ने मायापुर में एक कुटिया बनाई थी जहां की एकांत में रहकर रोज 3,00,000 बार हरिनाम का जाप कर रहे थे हरिदास ठाकुर के समान। और ये तपस्या उन्होंने की 10 सालों के लिए, मुश्किल से कुछ खाते थे और फिर ये तपस्या करने के पश्चात उन्होंने ये अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया। तो प्रभुपाद जी यहां भक्ति सिद्धांत जी का उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत जी ने उदाहरण दिया कि जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, हम जहां हैं वहां रहकर ही हमें भगवान का प्रचार करना चाहिए। तो हमारा क्या है संक्षेप में? प्रभुपाद जी कह रहे हैं 16 माला का जाप करो, चार नियमों का पालन करो और केवल कृष्णा प्रसाद स्वीकार करो और कृष्णा प्रसाद के अलावा कुछ नहीं। अगर हम छस्के की आदत डालेंगे, यहां भेलपूरी खानी है, ये खाना है, ये खाना है, तो अगर आप भगवान को भोग लगाए बिना भोजन खाओगे तो जो बनाने वाले की बुद्धि है अन्न के माध्यम से वो बुद्धि का प्रभाव आप पर पड़ेगा। और अगर आपके ये निर्णय है कि हमें केवल कृष्णा प्रसाद खाना है तो कृष्णा प्रसाद में इतनी शक्ति है कि कृष्णा प्रसाद खाने से ही हमारा हृदय जो है शुद्ध बन जाता है। तो हम सबका क्या भाव होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम खाएंगे तो क्या केवल कृष्णा प्रसाद खाएंगे और जाप करेंगे ध्यान पूर्वक। हरि नाम के जाप के विषय में कहा गया है कि आप हरि नाम का जाप तीन अलग परिस्थितियों में कर सकते हो, नाम अपराध, नामाभासा, शुद्ध नामा। तो शुरू में हम जाप करते हैं अपराधों की चिंता करे बिना। जब आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है तो हम फिर प्रयास करते हैं जाप करना पर अपराधों से रहित। और दस नाम अपराधों में एक अपराध, दसवा करना अपराध का दूसरा भाग क्या है, ध्यान पूर्वक जाप नहीं करना। तो हमें ये प्रयास रहना चाहिए कि हम वैकुंठ धाम में रहें। और अगर आप गृहस्थ हो, घर में रहते हो, तो घर में ऐसा वतन करो जहां की परम भगवान का गुणगान है। जैसे कि कई घरों में भक्तों ने मूर्ति स्थापना की है, मंगल आरती करते हैं, जो खाते हैं भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो घर में भी वो वैकुंठ धाम का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संक्षेप में पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी पर शासन किया, उन्होंने प्रजा को आदेश दिया परम भगवान का गुणगान करने के लिए, और प्रजा का इतना स्नेह था राजा के प्रति कि प्रजा एक पल के लिए भी राजा से जुदा नहीं रह सकती थी। आज है वैसी स्थिति? आज आपकी प्रजा जो है क्या अपने राजा के विषय में, शासन करने वाले के विषय में सोचती है कुछ? नहीं, शासन जो कर रहे हैं यही सोचते हम कितना लूटें, कितना कर उठाएं, और प्रजा यही सोचती है हम कितना छुपाएं। पर प्राचीन समय में आपने जैसे पढ़ा, प्रजा का इतना स्नेह था कि जब पृथ्वी महाराज ने कहा कि अब मैं वानरप्रस्थ आश्रम लेने के लिए जंगल जा रहा हूं, प्रजा का लगभग हार्ट अटैक हो गया। प्रजा इतनी दुखी हो गई कि रोने लगी। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु जी नवद्वीप में थे, ये साल उनके संन्यास के 500 साल गिरा है, तो जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने साथियों को सूचना दी कि अब मैंने संन्यास ग्रहण करना है, क्यों? महाप्रभु जी एक दिन गोपी 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 भाव प्रकट कर रहे थे तो एक विद्यार्थी था संस्कृत का जो कहने लगा, क्या गोपी गोपी कर रहे हो, हरे कृष्ण बोलो। वो महाप्रभु के भाव को नहीं समझ पाए कि गोपी भाव जो है सबसे उत्तम भाव है जो कि कोई भक्त अनुकूल कर सकता है। खैर, महाप्रभु ने उस विद्यार्थी का पीछा किया, विद्यार्थी भाग गया ब्राह्मणों की सभा में और कहने लगा दूसरों से, अरे सबने कहा इतनी तेज से भाग के क्यों आ रहे हो? उसने कहा, आप जानते नहीं, मेरी तो आज जान बच गई। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा, लोग कहते हैं बड़ा पंडित है, उस डंडे से मुझे मारने के लिए आया था। तो दूसरे विद्यार्थी ने कहा, वो जगन्नाथ मिश्रा का बेटा है तो हम क्या किसी छोटे व्यक्ति के बेटे हैं, देख लेंगे जगन्नाथ मिश्रा निमाई को। तो जब निमाई ने देखा कि लोगों में इतना क्रोध, गौरव और ऐसे कठोर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, निमाई सोचने लगे कि मैं अवतारित हुआ हूं पतितों को उद्धार करने के लिए, पर यहां अपराध किया जा रहा है, तो मुझे संन्यास आश्रम ग्रहण करने दो, क्योंकि संन्यास आश्रम में कम से कम सबकी इज्जत, सब संन्यासियों की इज्जत करते हैं। और जब ये सूचना पहुंची नवद्वीप वासियों पर, सब रोने लगे, सब ने कहा सन्यास लेगा निमाई, उसका मतलब है वो हमारे शहर में नहीं रहेगा, उसका मतलब कि हम उनका रोज दर्शन नहीं ले पाएंगे। और सब इतने दुखी हो गए कि निमाई उनके शहर को छोड़कर सन्यासी के रूप में अलग अलग शहरों की यात्रा करेगा, क्योंकि सन्यासी के लिए एक कर्तव्य बनता है कि वो अलग अलग स्थानों में यात्रा करे। तो इसी प्रकार जब प्रीतु महाराज ने अपने राज्य को छोड़कर जंगल में आए, उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी अपने बच्चों के हाथ, और प्रजा का इतना गहरा प्रेम था कि प्रजा सह नहीं सकी। हालांकि राजा तब वानरप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर रहा था भगवान के शरणागत होने के लिए, पर प्रजा का इतना स्नेह था कि प्रजा ये कष्ट सह नहीं सके। और प्रीतु महाराज ने अपने जीवन से उदाहरण दिया किस प्रकार का जीवन हमें बिताना चाहिए। ये नहीं कि हम अंतिम समय तक गृहस्थ आश्रम में रह पाए, हमें समय के साथ वानरप्रस्थ और सन्यास आश्रम भी ग्रहण करना चाहिए। और प्रीतु महाराज के शासन से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर राजा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करे तो हर प्रकार की आवश्यकता प्राप्त होगी, और जो प्रजा है अत्यंत सुखी होगी। आज प्रजा दुखी है, तनाव है, चिंता है, क्योंकि जो हमारे राजा हैं, नेता हैं, वो स्वयं दुष्ट विचार के हैं। तो आज राम राज्य की आवश्यकता है, प्रीतु महाराज के राज्य की आवश्यकता है समाज को सुखी बनाने के लिए। और ये संभव होगा अगर हम वैकुंठ धाम में रहने का पूरा लाभ उठाएं और हम हमारा चरित्र सुधारें और शरणागत हो जाएं और भगवान के प्रचार को आगे बढ़ाएं। फिर ये प्रचार बढ़ेगा और लोगों में आध्यात्मिक जागृति आएगी, जो हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। वैष्णव है परा दुखा दुखी, मतलब कि वैष्णव की इच्छा रहती है कि हमेशा दूसरों का उद्धार किया जाए उन्हें दिव्य ज्ञान देकर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसका? हाँ
थैंक यू महाराज फॉर सच अ नाइस क्लास। महाराज डिवोटी के लिए वानप्रस्थ का क्या मतलब, मतलब कैसे वानप्रस्थ को कैसे फॉलो कर सकते हैं?
वानप्रस्थ मतलब कि पति पत्नी घर छोड़कर तीर्थ के स्थानों की यात्रा करते हैं और गहराई के साथ भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। गृहस्थ आश्रय में भी पति पत्नी शास्त्र के आधार पर रहते हैं, वानप्रस्थ में और गहराई के साथ, और एक साल में नहीं रहते, अलग अलग स्थानों की यात्रा करते हैं। यस
लास्ट वीक आई विजिटेड ऋषिकेश टेम्पल ऑफ इस्कॉन।
यस
एंड देयर आई सॉ दैट कोको कोला एंड अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स वेर सोल्ड within the temple premises from the store.
That is not ISKCON temple. That Rishikesh temple is disputed.
I see.
Okay. We don't sell Coca-Cola. Okay. Any other question? Yes. Boliye. Yes.
महाराज हरे कृष्णा।
yes.
आपने कहा इस युग में जंगल में जाने का जरूरत नहीं है, कि मंदिर में रह सकता है, मंदिर वैकुंठ है। और आपने कहा भी है कि अगर एक मंदिर में वो संतुष्ट नहीं है वो दूसरा मंदिर में जा सकता है। अगर एक मंदिर में मंदिर वैकुंठ है, अगर एक मंदिर में वो संतुष्ट नहीं है तो क्या भरोसा है कि दूसरा मंदिर भी वैकुंठ है वहां संतुष्ट रहेगा?
अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए जहां हो वहीं रहो, बदलने की जरूरत नहीं। हम सोचते हैं बदलने से ज्यादा कभी कभी थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, पर जिसने संतुष्ट रहना है वह हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा।
महाराज कभी कभी दूसरा मंदिर में जाके उसको लगता है कि पहले मंदिर ही संतुष्ट था करके.
Yes, but sometimes people think grass is greener on the other side. Yeah.
Maharaj, if the home is Vaikuntha, because we are worshipping the deities and chanting Hare Krishna, so should the grihastha leave the house and take vanaprastha and come to the temple?
Could you repeat? I'm sorry. If
the home is Vaikuntha, we are chanting Hare Krishna at home and worshipping the deities, is there any need for the grihastha to leave their home and join the temple or go out and take vanaprastha?
Yes, if possible, they can do that. Because the home is also like Vaikuntha, but the temple atmosphere is generally more surcharged spiritually. Just like you can also recover from a disease at home, but the hospital atmosphere is better for recovery. So if you can, and if the temple has accommodation, a male man can. But we don't have facilities for females if they want to come and stay in the temple. So better they stay at home. Yes.
Hare Krishna Maharaj. Just आपने कहा कि मंदिर में हमें केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, right? परंतु अभी अभी एक स्टॉल शुरू हुआ है जिसमें भेलपुरी पानीपुरी सब कुछ बिना भोग लगाए दिया जा रहा है. उसमें कृष्ण भक्त बाकी के भक्त भी खाते हैं जो ब्रह्मचारी हो. तो हमें ध्यान देना चाहिए.
वो ठीक नहीं है. उनको भोग लगाना चाहिए क्या? वो
स्टॉल नहीं लगाते.
इधर है मुकुंद माधव. यू शुड लुक इन टू दैट. आज से विल टेक एक्शन. उनको भोग, उनको प्रसाद भोग लगाना चाहिए.
हमारा स्टॉल में ऐसा होता है, पहला पहला एक बार भोग लग जाता है, उसका बाद बिक्री चालू रहता है. ऐसा नहीं है हर एक चीज को भोग नहीं लगा सकते. पहला एक बार भोग लगा के उसके बाद चालू.
पहले भोग लगाते
हैं. हाँ जी प्रभु. हाँ जी महाराज.
हाँ तो एनीवे जस्ट लुक इनटू इट. सो
हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू फॉर गिविंग सच एन ऑथेंटिक क्लास. My question is that how can you explain more, little briefly more about the teachings of Prithu Maharaj in reference to Krishna consciousness?
We'll do it next time.
Thank you.
Okay. Hare Krishna.